स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तन के मालिक, मन के मालिक, तन के मालिक, मन के मालिक, दिल दिमाग धड़कन के मालिक, भारत की धरती के मालिक, ओ, 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 ओ भारत की धरती के मालिक, परम पिता यीशु तेरी जय।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से अपने प्रियों और परिवार और दोस्तों के साथ परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा है कि आमोस इसराइलियों को चेतावनी देता है और उन्हें मौका देता है परमेश्वर की ओर से कि वे आएं और अपने पापों के लिए मन फिराएं। तो मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी, आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वचन जीवित है, दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। पिताजी, हमारी प्रार्थना है जब हम आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, निश्चित रूप से हम इसे प्रत्येक के जीवन के लिए आत्मिक आशीष का कारण बनने पाए। इस घड़ी हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में परेशान हैं, निराश हैं, तनाव में हैं, जॉब की तलाश में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन की जरूरतों को आप पूरा करें, अपने वचन से बोले और बातचीत करें, हम सबों को आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछला अध्याय एक धमाके के साथ समाप्त हुआ था और ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर ने अंतिम निर्णय ले लिया है और इसराइल के लिए अब कोई आशा नहीं है। परंतु अध्याय 5 भविष्य की चर्चा करता है और स्पष्ट करता है कि परमेश्वर इसराइल को दंड देगा। परंतु पहले 15 पदों में परमेश्वर इसराइल से आग्रह करता है कि उसकी खोज करें जिससे कि वे दंड से बच जाएं, जब तक उनके दंड का अंतिम चरण ना आ जाए। उनके लिए आशा है, अन्य लोग जो परमेश्वर के पास आए वे बच गए, अन्यथा परमेश्वर ने जो कह दिया वह तो होकर ही रहेगा। मेरे प्रियो, हमने पिछले अध्ययन के आखिरी पद में आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में देखा कि परमेश्वर क्या कहता है। तो आइए हम उसे समझने के लिए एक बार फिर से देखें। यहां पर लिखा हुआ है, बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न वेशेरबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। बेतेल की खोज में न लगो, बेतेल में सोने के बछड़े की मूर्ति रखी गई थी। आज बेतेल का अस्तित्व नहीं है, यद्यपि गाइड आपको 2 स्थान दिखाते हैं जिन्हें वे बेतेल कहते हैं, परंतु बेतेल का स्थान कहां है कोई भी नहीं जानता है। और इसी के क्रम में आगे हम देखते हैं, लिखा है न गिलगाल में प्रवेश करो। गिलगाल वह स्थान था जहां इसराइल ने यर्दन पार करके यहोशू की अगुवाई में पहली बार प्रतिज्ञा के देश में डेरा डाला था। वहां उन्होंने मिलाप वाले तंबू स्थापित किए थे और उसके बाद यरीहो नगर को जीता था। वह एक पवित्र स्थान बन गया था। सच तो यह है कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वे अपनी संतानों को बताएं कि यही वह स्थान था जहां परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति दिलाई थी। परंतु इस समय वे वहां मूर्ति पूजा करके परमेश्वर के पवित्र स्थानों को मूर्तियों का स्थान बना चुके थे, अर्थात पाप कर चुके थे। तब हम आगे देखते हैं, और न वेशेरबा को जाओ। वेशेरबा दक्षिणी राज्य के नेगेब में था, वह भी एक प्रसिद्ध स्थान था। यही वह स्थान था जहां अब्राहम ने अबीमेलेक के साथ वाचा बांधी थी और परमेश्वर का नाम पुकारा था, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय में और न्यायियों की पुस्तक 20 अध्याय उसके एक पद में देखते हैं, दान से विशरवा, जिसे कहा गया है दान से विशरवा, जिसका अभिप्राय था उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण इसराइल। मेरे प्रियो, आमोस के युग में इसराइली विशरवा में मूर्ति पूजा करने के लिए तीर्थ यात्रा किया करते थे। आगे हम देखते हैं, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। इस समय आमोस विशरवा का उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि विशरवा दक्षिणी राज्य में था और उसकी बंधुआई के लिए अभी 100 वर्ष बचे हुए थे, परंतु गिलगाल और बेतेल शीघ्र ही बंधुआई में जाने वाले थे। आमोस की भविष्यवाणी कैसी सही थी। मेरे प्रियो, यहां पर वह कहता है अभी भी आशा है। हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक 5 अध्याय उसके 6 पद में, यहां पर लिखा है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, यह कैसा महान निमंत्रण है, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरी ओर नहीं फिरोगे, नहीं फिरे तो मुझे दंड देने पर विवश होना पड़ेगा। और यह सत्य आज आपके जीवन के लिए भी लागू होता है, मेरे जीवन के लिए भी लागू होता है। यदि हम अपने पापों से नहीं फिरेंगे तो निश्चय ही उसे विवश होकर दंड देना पड़ेगा। आमोस 5 अध्याय के 7 पद में आगे लिखा है, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। मुक्ति विचारक इस अंश में कर्मों द्वारा उद्धार का प्रावधान देखते हैं। दुर्भाग्य से उसने आमोस की पूर्ण पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है। इसराइल परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आराधना तो करते थे, जैसे बलि चढ़ाना, विधियों का पालन करना, परंतु उनका आचरण उनके कार्यों के अनुसार नहीं था। वर्षों पूर्व डॉक्टर जी कैम्बेल मॉर्गन ने कहा था कि वह अलौकिक मनुष्य की इष्ट निंदा से अधिक धर्मी जन की इष्ट निंदा पर अधिक खेदित हैं। अधिकांश विश्वासियों का विचार है कि कलीसिया के नाना प्रकार के अनुष्ठानों को पूरा करना पवित्रता है, परंतु यह है कि आराधनालय में वह काम करना जो कलीसिया का अनुष्ठान नहीं है तो वह इष्ट निंदा है। मेरे मित्रों, मेरे विचार में खतरे की बात तो यह है कि कोई आराधना में स्तुति गान गाए और बाहर उसका जीवन विश्वास योग्य ना हो, अन्याय से पूर्ण हो, धार्मिकता से रहित हो, तो परमेश्वर उसे अस्वीकार करता है, क्योंकि ऐसा जीवन सांसारिक इष्ट निंदा है। परमेश्वर इसराइलियों के जीवन में इसी बात से अप्रसन्न था। मेरे प्रियो, मैं यह नहीं कह रहा कि प्रभु यीशु में विश्वास करना आवश्यक नहीं है। उद्धार पाने के लिए तो प्रभु यीशु में विश्वास करना ही होगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप प्रभु यीशु का अंगीकार करके बाहर सुसमाचार विरोधी जीवन जी रहे हैं, तो इसके लिए एक ही शब्द कहा जा सकता है जिसका प्रभु यीशु ने सबसे अधिक उपयोग किया है, ढोंगियों। जी हां, ढोंगी का जीवन जीना प्रभु यीशु के लिए प्रेम और उसमें विश्वास का अंगीकार करने के बाद बाहर हमारा जीवन सुसमाचार के विपरीत हो तो सुसमाचार को बड़ी हानि पहुंचती है। अधिकांश जनों को यह स्वीकार नहीं है, वे ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे मसीही कार्यों में अत्यधिक सक्रिय हैं, परंतु उनके दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन में वे प्रभु यीशु के लिए जीने में सक्रिय नहीं है। यही तो दुख की बात है। मेरे प्रियो, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो कलीसिया की प्रत्येक संस्था में बहुत सक्रिय था, परंतु विवाहित होने के बाद भी वह गायन मंडली की एक युवती के साथ प्रेम लाभ कर रहा था। कुछ समय तो वह कलीसिया से बाहर रहा, परंतु वह फिर सक्रिय कलीसियाई कार्यकलाप में भाग लेना चाहता था। पास्टर होने के नाते पास्टर ने ऐसा व्यवहार करना उसके साथ स्वीकार नहीं किया और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसी कारण मुझे वे लोग भी नासमझ कहते हैं। कारण यही है कि मैं उनके साथ सहमत नहीं था। मेरे मित्रों, आमोस अंगीकार के जीवन को नहीं जीने की ही चर्चा करता है। यही उसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि हमारा जीवन बाहर कुछ है और अंदर कुछ है, और चाहता है परमेश्वर हमसे कि हम वैसा जीवन जिए जैसा परमेश्वर चाहता है। यहां पर आमोस हमसे कहता है कि सामरिया के भविष्यद्वक्ता तो केवल मन भावन संदेश ही सुनना चाहते थे और सुना रहे थे। अतः परमेश्वर को दक्षिण राज्य से आमोस को बुलाना पड़ा, जबकि वह दूसरे राज्य का व्यक्ति है, लेकिन उसे परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए उत्तरी राज्य में भेजा गया। इसराइल के भविष्यद्वक्ताओं को पैसा देकर मीठी मीठी बातें करने के लिए रखा गया था। किसी टीकाकार ने कहा है कि आज का प्रचार मंच कलीसिया के विचारों का भजाने वाला पट है। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पौलुस तिमोथियुस को लिखता है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, जैसा कि आज हम देखते और सुनते हैं। श्रोता मन भावन बातें सुनना चाहते हैं और फिर वक्त को देखते हुए उन्हें शाबाशी देते हैं। ऐसा ही आज की कलीसियाओं में भी हो रहा है। मेरे मित्रों, इसराइल की प्रजा आमोस से अप्रसन्न थी कि वह उन्हें धर्मी एवं पवित्र जन नहीं कहता है। यही उसका संदेश था। आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, जो कचपचिया और मृग शीरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। यहां फिर परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रकट करता है और उन्हें मन फिराव के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमसे कहीं अधिक धीरजवंत है। मैंने यही अनुभव किया है कि मुझे परमेश्वर के धीरज के साथ धीरजवंत होना है। लिखा है, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है। उस युग में मृगशिरा नामक तारामंडल पहचाना जाता था, और तब हम देखते हैं जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है। परमेश्वर ही है जो वर्षा देता है। जी हां, कौन है जो समुद्र के जल को भाप बनाकर बादलों की रचना करता है, तदोपरांत वायु द्वारा बादलों को थल के ऊपर लाकर उनका मंथन करके वर्षा करवाता है कि सही स्थान पर पानी गिरे। मेरे मित्रों, आमोस कहता है कि उसका नाम यहोवा है। वह इसराइल से कह रहा है, तुम मूर्ति पूजा में लगे हो और तुम्हारा विश्वास जीवित परमेश्वर सृजनहार यहोवा से भटक गया है। आज हम में से कई लोग भी अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ करके भटक गए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मनों को फिरा करके उस सच्चे परमेश्वर की ओर आ जाएं। आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे हम पढ़ते हैं, वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश करता है, जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। वह कहता है जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं। उस युग में सभा नगर द्वार पर होती थी और अपने धर्मशास्त्र में देखा होगा कि उनके न्यायी नगर द्वार में ही बैठते थे। बोअज अपने निकटतम कुटुंबी को रूत और नौमी के संबंध में नगर द्वार पर ही लाया था। लूत सदोम में राजनीति में सक्रिय होकर नगर द्वार में बैठता था, अर्थात वह उनके न्यायियों में से एक था। अमोस कहता है कि उनका अपराध बताने वाले न्यायी से वे घृणा करते थे, अतः वहां के न्यायी दुष्टों का पक्ष लेते थे, अर्थात पक्षपात करते थे। तब हम देखते हैं खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। जी हां, न्याय करने वाला उनका घृणा पात्र था। मेरे विचार में तो मनुष्य का यह स्वभाव आज तक नहीं बदला है। जो सही बात को बता देते हैं उनसे लोग घृणा करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते और नहीं चाहते कि उनकी बातें लोगों तक पहुंचे, और यही कारण था कि लोग इनसे घृणा करते थे। आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अनहर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों में और पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु ना पीने पाओगे। यहां पर हम देखते हैं लिखा है, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो। गरीब को न्याय नहीं मिलता है, मुझे इसका पूरा अनुभव है क्योंकि मैं ऐसा ही था। हम आगे देखते हैं, जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे। सामरिया के वैभवशाली महल आज खंडहर पड़े हुए हैं। आमोस की भविष्यवाणी के बाद शीघ्र ही वे ध्वंस किए गए और आज तक 3000 वर्षों से वे खंडहर बने पड़े हैं। आमोस 5 उसके 12 पद में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। मेरे प्रियो, उस समय के न्यायालय में गरीब को न्याय नहीं मिलता था। क्या आज की परिस्थिति में बदलाव आया है? आज मृत्यु दंड को समाप्त करने की मांग का मुख्य कारण है कि धनवान को फांसी पर लटकना ना पड़े। धनवान तो बच जाएगा, परंतु क्या गरीब यदि पकड़ा गया तो बच पाएगा? धनवान तो पैसा देकर तारीखें पर तारीखें बढ़ाता जाता है और जेल तक पहुंचने के लिए जीवित ही नहीं रहता है। मेरे प्रियो, देश में न्याय ना हो तो परमेश्वर ध्यान देता है। परमेश्वर ही ने मनुष्य को सरकार चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा है। वह उनसे लेखा लेगा, वह उनका सत्यानाश कर देगा, जैसे रोम राज्य का अंत हुआ है। आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय के 13 पद में लिखा है, इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। मनुष्य जानता था कि उसे न्याय नहीं मिलेगा और अनेक भले मनुष्य चुप थे। यह बुद्धिमानी ही थी, क्योंकि यदि वे आवाज भी उठाते तो कौन सुनता? आज हम विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता रखते हैं और बात भी करते हैं, धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, परंतु अंत में होता क्या है? आज केवल पैसे वाले ही को न्याय मिलता है, उन्हीं की सुनी जाती है। समाचार पत्र तो मनुष्य को बहकाने का साधन है। आज बहुमत शांत है, क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें भौंकने वाला कुत्ता समझा जाएगा। आज का युग आमोस के युग के इसराइल से अलग नहीं है। आमोस नबी की पुस्तक 5:14 में लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। जी हाँ, परमेश्वर फिर इसराइल को मन फिराव के लिए पुकारता है और कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर सच ठहरे। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही कहता है कि हम अपने मनों को फिराएं और उसकी ओर चले आएं। संसार हमें धोखा देता है, परंतु परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। उसके समक्ष सब लोग एक समान हैं, एक बराबर हैं, उसके सामने न्याय है। आइए आज हम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु के पास आएं और उससे कहें कि प्रभु मुझे भी एक मौका दे, ताकि मैं अपने जीवन में आपकी ओर आगे बढ़ने पाऊं। आप अपने पापों को अंगीकार करें, मनों को फिराएं और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपको आशीषित करेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
के मालिक, मन के मालिक, दिल दिमाग
की धरती।